ओम शांति। आप सभी का सबसे पहले तो ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ स्वागत है। आज का जो विषय है वो है स्ट्रेस फ्री लिविंग। आप सभी को स्ट्रेस होती है कि नहीं होती, पहले तो पूछा जाए। जिनको स्ट्रेस कभी नहीं होती वो हाथ उठाए। जिनको कभी स्ट्रेस नहीं होती, नहीं होती है जिनको, एक दो, दो को नहीं होती है, होती है उनको भी, ठीक है, कभी कम कभी ज्यादा होती है। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि क्या पॉसिबल है कि हम बिना स्ट्रेस के रह सकें। इसकी एक विधि क्या है, टेक्निक क्या है, उसको हम थोड़ा गहराई से समझेंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि हम स्ट्रेस में बिल्कुल ना हो, हम स्ट्रेस फ्री रह सकें, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका आप उदाहरण यहां देख भी रहे होंगे। आप ज्ञान सरोवर में कब से आए? परसों से, 6 तारीख से। थोड़ा पीछे वाले आगे आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बातें हम दिल की बातें करेंगे ना आपसे, बहुत ही नजदीक बातें करेंगे। कोई भी पीछे ना बैठे हैं, जिनको स्ट्रेस ना होते वो पीछे बैठ सकते हैं, जो जिनको कभी स्ट्रेस ना होते वो पीछे बैठ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही प्रैक्टिकल एकदम लाइफ में आने वाली बातें डिस्कस करेंगे। आप 6 तारीख से यहां पर आए हैं और आपने ज्ञान सरोवर में जब से आप आए तो आपने यहां पर जो खाना खिलाने वाले हैं, आपको रिसेप्शन में जो बैठे हुए हैं, आपके जो जहां पर रह रहे हैं वहां मैनेज कर रहे हैं खाना बनाने वाले, उनको स्ट्रेस में देखा क्या आपने? देखा किसने? तो इसका क्या अर्थ है कि ऐसा पॉसिबल है ना बिना स्ट्रेस के काम करना? पॉसिबल है ना? तो हम ये क्या टेक्निक है इसके बारे में हम गहराई से जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू है जिसमें आज आप घूमने जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ओके। आज अगर हम देखें कि दुनिया में स्ट्रेस का क्या हाल है, आज दुनिया में 20% लोगों को डिप्रेशन है, उदास हैं लोग, डिप्रेशन में है, माइनर डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन, 100 में से 20 लोग उदास हैं। और 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती, गोली खाकर के सोते हैं। आप में से भी कुछ होंगे जो खानी पड़ती होगी। और एंजाइटी, एंगर, क्रोध, आप में से कितने लोग हैं जिनको क्रोध कभी नहीं आता है? हाथ उठाए जिनको क्रोध कभी नहीं आता है। सच्चा सच्चा उठाना है, एक नहीं उठाया, सबको क्रोध आता है। पीछे एक रिसर्च हुई थी, पीछे आज से 2 साल पहले एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया कि क्रोध करने से, एक बार क्रोध करने से हमारा जो सिस्टम, हमारी जो बॉडी में जो सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम, फिजियोलॉजी जो हमारी बॉडी की, उस पर 72 घंटे के लिए नुकसान हो जाता है, 72 आवर्स के लिए। और एक जैसे कैस्केड मैकेनिज्म होता है ना, कैस्केड में ना जैसे एक झरना ऊपर से नीचे गिरता है ना, एक पहाड़ी पर गिरता है, फिर दूसरी पहाड़ी पर, फिर तीसरी पहाड़ी पर, चौथी पहाड़ी पर, वो कैस्केड मैकेनिज्म 72 घंटे तक चलता रहता है। गुस्सा क्षणिक आता है किंतु उसका इफेक्ट फिर 72 घंटे तक हमारी बॉडी पर होता रहता है। 72 घंटे क्या होता रहता है कि ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, 72 घंटे तक आप ठीक डिसीजन नहीं ले सकते। आपकी तो राइट कंसेप्ट मार्केटिंग है ना, तो राइट कंसेप्ट में रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा, है ना? आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा, जजमेंट पावर कम हो जाएगी। फिर हार्ट में जो आर्टरीज होती है, हमारी हार्ट की आर्टरीज, उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है हार्ट में। तो हार्ट का काम क्या है, सारी बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून भेजना। हार्ट ही वो खून भेजता है जिसमें सारी जो हमारी जितनी भी फूड वैल्यू वाली चीजें होती हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिंस, वो हम खाने में खाते हैं, फिर लिवर में खाना आता है, फिर उसके बाद हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से सारी बॉडी में पंप होता है। हार्ट वो सेंट्रल मीटर, वो मशीन है, मोटर है, जिससे सारी बॉडी में सब चीज पंप होती है। तो अगर आपका हार्ट फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, अगले 72 घंटे के लिए आपकी जो बॉडी में सप्लाई है ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, प्रोटीन की, फैट की, विटामिन की, मिनरल्स की, वो ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है, अगले 72 आवर्स के लिए जो खाना पच रहा है आपका, वो भी खून से ही पचता है। ठीक से ब्लड फ्लो होगा तो खाना पचेगा, अगर ठीक से एंजाइम निकलेंगे तो खाना पचेगा, है ना। तो वो जो खाना का जो प्रोसेस है पचने का और एब्सॉर्ब होने का, वो खराब हो जाता है। तो अगले 72 घंटे के लिए क्या होगा, आपका खाना भी ठीक से पचता नहीं। ठीक है, और फिर किडनी का क्या काम है, किडनी का काम है जितने भी टॉक्सिन्स बॉडी में आपके अपने आप बनते हैं, टॉक्सिन्स हमारे हर समय बॉडी में बनते रहते हैं, और वो बाहर निकल जावे, वो किडनी के थ्रू निकलते हैं। 120 ml ब्लड एक मिनट में छनता है हमारी किडनी में। एक मिनट में कितना ब्लड छन जाता है, 120 ml। तो एक घंटे में कितना हो गया, 120 को 60 से गुना करें तो 720 नहीं 7200 है ना। 7 लीटर खून एक घंटे में छनता है, 24 घंटे में कितना हो गया। तो जो प्रोसेस है खून छनने का, खून में टॉक्सिन निकलने का, वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो आपने एक बार गुस्सा किया, कितने घंटे तक नुकसान हुआ, 72 आवर्स तक। तो एक बार गुस्सा करने के बाद, चलो एक बार तो कर लिया, फिर एक बार करने के बाद कितने देर, कितने घंटे के बाद दोबारा करना चाहिए, 72 घंटे के बाद। ठीक है, राइट। एक बार नुकसान हुआ तो फिर 72 घंटे तो रिकवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट डोज कब लेनी चाहिए गुस्से की, 72 घंटे के बाद। अगर आपको ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं आप, और आपको ब्लड प्रेशर की गोली 24 घंटे के बाद रिपीट करनी है, ये तो नहीं होता 4 घंटे बाद दोबारा ले लेते हैं, ऐसा होता है क्या। फिर 8 घंटे बाद तीसरी टैबलेट लेते हैं, एक गोली 24 घंटा असर करती है, तो 24 घंटे के बाद ही रिपीट करते हैं ना। नहीं, तो क्रोध का असर आपको चाहिए, ठीक है, अपनी बॉडी में चाहिए, थोड़ा नुकसान चाहिए, कोई हर्जा नहीं है ना, पर 72 घंटे के बाद फिर उसको दोबारा करना चाहिए। ठीक है, राइट। आज एक पॉलिसी डिसीजन बना लें हम सभी, है कि अगर हम एक बार गुस्सा करेंगे तो फिर 72 घंटे तक हम नहीं करेंगे। इज इट ओके, या नहीं करेंगे। चलो 72 घंटे, चलो आपको नुकसान थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, ब्रेन ना सोचे, ठीक, क्या फर्क पड़ता है, ना सोचे क्या फर्क पड़ेगा। हार्ट ठीक काम ना करे, किडनी ठीक ना काम करे, आपका पेट ठीक डाइजेशन ना करे, तो 72 घंटे तक तो प्रेज करना चाहिए नहीं फिर उसके बाद, ऐसा नहीं। जैसे प्यार होता है ना, जैसे प्यार होता है ना, सोच के नहीं किया जाता है ना, ऐसे क्रोध भी ऐसे अपने आप आ जाए, ऐसा है। उसके बारे में बात करें, क्रोध पहले आप समझ जाओ कि क्रोध करना कितना आवश्यक है ना, नहीं? ठीक है, तो क्रोध के मैंने फायदे तो आपको बता दिए है ना। एंजाइटी, चिंता भी सभी, चिंता सभी को होती है, कोई ऐसा भी है चिंता से एकदम फ्री है, किसी को एंजाइटी नहीं है। ग्रीड, लोभ, लस्ट, ईगो, अटैचमेंट, मोह, लेजीनेस, आलस्य, डर, सिनिसिज्म कहते हैं दूसरे में दोष निकालने की आदत, फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, हॉस्टिलिटी, रिवेंजफुल बिहेवियर, बदला लेने की भावना, टाइप ए बिहेवियर क्या है, टाइप ए बिहेवियर वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा प्रेशराइज फील करता है, समय का प्रेशर, काम का प्रेशर और अपनी हैबिट्स का प्रेशर। हैबिट्स में ना, ये काम इस ढंग से होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट, रिलेशंस का प्रेशर, वाइफ का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, हमेशा प्रेशराइज महसूस करता है, इसलिए उसको कंपटीशन की भावना, एग्रेसिव। ऐसा आदमी क्या बोलता है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं, उसे कहते ना आपको, आप ये काम करेंगे वहां चलेंगे, सांस लेने की फुर्सत नहीं। कई बार तो लोग बोलते हैं मुझे मरने की फुर्सत नहीं, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, आप भी काफी बोलते होंगे। तो ऐसे लोगों को ये सब जो कारण है इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर ज्यादा मात्रा में होता है, डायबिटीज अधिक मात्रा में होती है, कैंसर अधिक मात्रा में होता है, हार्ट अटैक्स अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये सब बीमारियां अच्छी अच्छी बीमारियां बता रहा हूं ना, हड्डियों में दर्द, गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कमर की दर्द, घुटनों का दर्द, और भी मतलब एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, श्वास की प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम है ना, सिर में दर्द, ये सब बीमारी ज्यादा होती है। मतलब कोई बीमारी भी आप बताओ, ये सब मुख्य कारण है सब बीमारी। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब हम देखें कि फिजिकल हेल्थ क्या है आज के संसार की। 1976 में ऐसा कहा जाता था कि मन से फिजिकल बॉडी में बीमारी आने से मन में टेंशन हो सकती है, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो उससे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप भावुक हो सकते हैं। किंतु क्या ऐसा भी हो सकता है कि टेंशन होने से हार्ट की बीमारी हो जाए? 1976 में डिसाइड किया गया कि यस, इसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है, 70% बीमारियां इस वजह से होती है। कि 2000 होते होते ये पक्का हो गया कि सबकी सब बीमारियां मन से होती हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बीमारी भी हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे गर्दन का दर्द हो, चाहे सिर में दर्द हो, चाहे एसिडिटी की बीमारी हो, इवन एक्सीडेंट भी, गला खराब हो, जुकाम होता हो, ये सब टेंशन की वजह से होते। अब हम देखें आज का, हाँ जी, इस जन्म की बीमारी अगले जन्म में नहीं जाती है, वो मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, उसके बारे में बात। एक लास्ट लाइन अभी खत्म नहीं, लास्ट लाइन, लास्ट। अगर आज हम 20 साल से ऊपर व्यक्ति को देखें, 20 साल के जो ऊपर व्यक्ति हैं उनकी अगर सर्वे करें, तो 100 में से 30 लोगों को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है। शहरों में, जैसे भीलवाड़ा में आप, या भीलवाड़ा में है, दिल्ली में है, या अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, तो 100 में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। दिल्ली में एक सर्वे हुआ रिसेंटली बच्चों में, 12 से 16 साल के ग्रुप में, तो उसमें पाया गया कि 14 बच्चों को, 100 में से 14 बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर है। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के, बच्चों का ब्लड प्रेशर कभी चेक कराते हैं? नहीं कराते ना, चेक करा के देखिए, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर है। नाम क्या है? हाइपर टेंशन। हाइपर माना ज्यादा, टेंशन माना टेंशन है ना। तो जैसे जैसे टेंशन बच्चों में भी आती जा रही है, जो पहले बड़ों में होती थी, अब बच्चों में भी आनी शुरू हो गई, तो इसलिए बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ठीक है। इन्फेक्शन, कोई ना कोई इन्फेक्शन, गला खराब, जुकाम, खांसी, या कोई भी और पेट में इन्फेक्शन या स्किन में इन्फेक्शन, लगभग 100 में से किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 20 लोगों को इन्फेक्शन है। हार्ट की बीमारी, 1960 में सिर्फ 100 में से एक आदमी हार्ट की बीमारी होती थी, आज 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है। 2000 की फिगर है, 2000 जो बीत गया, 7 साल पहले की बात है, और WHO का ऐसा कहना है कि 2010 तक की संख्या डबल हो जाएगी। और ये बीमारी 1960 में 70 साल की उम्र के बाद होती थी, हार्ट अटैक की बीमारी। आप कितनी, आप किस उम्र में होती है? आप 20, 22, 25, 30, 35 साल की उम्र में होने लगती है। WHO का ऐसा कहना है कि अगर हम ना संभले तो क्या होगा, ये बीमारी स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब 15 साल 16 साल की उम्र में भी बच्चों को हार्ट अटैक, मतलब आप क्या खबर आएगा 2010 में, क्या खबर आएगा कि आपके घर में खबर आएगी कि आपका बच्चा स्कूल में था, स्कूल में अचानक छाती में दर्द हुआ, उसको आईसीयू में, सीसीयू में दाखिल करा दिया, आप अपने बच्चे से जाके मिल लीजिए, उसको हार्ट अटैक हुआ। तो दिन आप देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? उसके रिस्पॉन्सिबल कौन? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम्स है ना, अस्थमा और रिलेटेड प्रॉब्लम 10% लोगों को है। एसिड की बीमारी, एसिड पेप्टिक डिजीज, 20% लोगों को ऐसी बीमारी है की एसिडिटी की कि उनको दवाई खानी पड़ती है। वैसे आज अगर एडल्ट्स में देखें, 100 में से, अभी आपने एक सर्वे सुना होगा, अखबार में भी आया था, 100 में 70 लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। ये जो एसिड रिफ्लक्स करता ना, एसिड की जलन, कभी कभी जलन होना, भारीपन लगना, छाती के पीछे जलन होना, 100 में 70 लोगों को हो गई। 20 लोग तो ऐसे हैं, वो 50 जो बाकी 50% लोग ऐसे हैं जो कि मतलब उनको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत ऐसे खा के ठीक हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से 20 लोग ऐसे उनको दवाई खानी पड़ती है। आई एन ईएनटी प्रॉब्लम्स, आंखों की प्रॉब्लम, नाक कान गले की प्रॉब्लम्स 100 में से 10 लोगों को है। डायबिटीज 100 में से 10 लोगों को है, और बढ़ती जा रही है, ठीक है। कैंसर लगभग 100 में से 5 लोगों को है, स्किन प्रॉब्लम लगभग 100 में से 10 लोगों को है, बोन प्रॉब्लम बताए ना हड्डियों की तकलीफें हैं, कमर की दर्द, गर्दन की दर्द, घुटनों की दर्द 100 में से 20 लोगों को है, और हार्मोनल प्रॉब्लम 5% लोगों को है, और जो हमारी बहनें माताएं उनको 100 में से 20 बहनों को कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सारी टोटल कर दें, सारी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, ये लगभग 170 प्रॉब्लम्स है। 100 लोगों को 170 बीमारियां हैं, अच्छी बात है ना, हमारे समाज की हेल्थ अच्छी है ना, कैसी हेल्थ है, अच्छी है। आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था, 80 साल का व्यक्ति भी कहता था मेरे दांत देखो अब तक ठीक ठाक है, चश्मा नहीं लगा हुआ है ना, और आज क्या होता है 10 साल के बच्चों को भी दांत में कीड़ा लग जाता है, मसूड़े खराब हो जाते हैं, चश्मा लग जाता है ना। मेरे ग्रैंडफादर थे 85 की एज तक उनके तो एक भी दांत खराब नहीं था, कोई दांत में कीड़ा नहीं लगा हुआ था, पहली बार 85 की एज में उनको दांत में प्रॉब्लम हुई थी। तो आज के समाज में हम कहां पहुंच गए हैं, क्यों पहुंच गए, डॉक्टर से कमी है क्या? आज से 40-45 साल पहले डॉक्टर्स तो कहां होता था, एक शहर में एक मुश्किल से एक डॉक्टर होता था, और आज कितने डॉक्टर्स हैं, गली गली में डॉक्टर हैं, और हॉस्पिटल से कमी है क्या? बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बन गए, ज्यादा हॉस्पिटल होना, ज्यादा डॉक्टर्स होना, इसका क्या अर्थ है? अगर कहीं ज्यादा जगह जगह कैंप लगे हों, जगह जगह कैंप लगे हों, इसका क्या अर्थ है? हेल्थ कैंप लगे हों उसका मतलब क्या है? महामारी कोई फैली हुई है, नहीं नहीं ऐसा होता नहीं होता, आज जगह जगह कैंप डॉक्टर के लगे हुए हैं, ठीक है ना, गली गली में डॉक्टर्स हैं, ऐसे तो हर आदमी आज डॉक्टर बन गया है, ठीक है ना, फिर भी बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई। नेक्स्ट लाइन, तो ये जो सब क्यों बढ़ गई हैं, सारी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं क्यों बढ़ गई सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं, जिंदगी में भागदौड़ क्यों हो रही है? पैसा कमाने के लिए, पैसा ज्यादा क्यों चाहिए, चाय पीने के लिए, अच्छा ओके चलो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इज इट पॉसिबल टू हैव ए स्ट्रेस फ्री लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस yes. पर आप में से कोई है तो नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ मीन्स ऑलवेज हैप्पी लाइफ, सदा खुश, आप में से सदा खुश कौन रहता है, सदा खुश, ऐसे तो झूठ बोल रहे हो आप, चलो आगे बात करते हैं, एवर हैप्पी लाइफ है ना, इज इट पॉसिबल टू बी एवर हैप्पी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के संसार में सदा खुश रह सकता है कोई, इज एनीवन एवर हैप्पी इन द मॉडर्न वर्ल्ड? चलिए हम आगे बात, नेक्स्ट लाइफ, चलो पहले स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस क्या चीज है, विल टॉक वेरी सिंपल थिंग्स, व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, इट इज ए रिएक्शन टू एनी चेंज, ये रिएक्शन है किसी भी चेंज का, रिएक्शन है, सपोज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका बच्चा रोज, आप जब ऑफिस में, ऑफिस से अपने घर आते हैं, आपका बच्चा रोज आपको नमस्ते करता है, पापा नमस्ते, आज आपका पापा नमस्ते, आज उसने बोला नहीं आपको, बैठा है सामने आपका पापा नमस्ते नहीं, तो क्या होगा आपको, स्ट्रेस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या इसने नमस्ते क्यों नहीं की? आप जब आप घर पे आते हैं, आपकी वाइफ रोज एक गिलास ठंडा पानी आपको देती है आते घर में, आज उसने पानी नहीं दिया तो क्या होगा, स्ट्रेस होगी नहीं होगी, इसने आज मुझे पानी के लिए क्यों नहीं पूछा, मतलब जस्ट कोई चेंज जो नॉर्मल चीज चल रही है उससे थोड़ा सा बदलाव होगा, उससे उस बदलाव की वजह से आपको स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक बात, नो दिस चेंज कैन बी इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज, इंटरनल माना आपने आपके अपने अंदर, अपने अंदर माना आपके मन में हो सकता है, मन में माना मन के चार एस्पेक्ट हैं, मन क्या चीज है, कोई डिफाइन करेगा मन, मन क्या चीज है, आपने काफी लेक्चर सुने होंगे, संकल्प शक्ति, और कुछ, मन देखने में कैसा होता है, मोटा पतला छोटा लंबा, सोचने की शक्ति, उसकी शेप कैसी होती है, तरंग के रूप में होता है। ओके, खाली सोचने की शक्ति है मन, कुछ इसके अलावा कुछ और भी है? विचारों की शक्ति तो वही होगा, सोचने की, विचारों की, इसके अलावा कुछ और भी है मन में? आत्मा भी मन के अंदर होती है, या मन आत्मा के अंदर मन होता है, आत्मा मन आत्मा के अंदर होता है, या आत्मा के अंदर मन होता है? चलिए, मन के चार एस्पेक्ट हैं, मन फोर एस्पेक्ट है मन के, उसे इंग्लिश में हम टीम कहते हैं। आपके पास भी टीम होती है ना, तो यहां पर टीम होती है, मन है, मन को टीम कहते हैं। ठीक है, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड्स एंड एम फॉर मेमोरीज। मेमोरीज, तो विचार, थॉट्स माना विचार, ई इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स माना इसे वृत्ति भी कहेंगे या दृष्टिकोण कहेंगे या नजरिया कहेंगे, और एम माना मेमोरीज, मेमोरीज माना स्मृति, स्मृति या यादें। तो स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, ये मन के चार एस्पेक्ट्स हैं। खाली सोचने की शक्ति नहीं है मन, मन में चार बातें हैं। ठीक है, तो अगर आपके विचारों में कुछ चेंज होता है तो भी आपको स्ट्रेस होगी, भावना में कुछ चेंज हुआ तो भी स्ट्रेस होगी, एटीट्यूड में स्ट्रेस होगा आपके या किसी और के में तो भी स्ट्रेस होगी, अगर आपकी स्मृति आपको में कुछ परिवर्तन हो गया तो भी स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे फिजिकल, फिजिकल माना आपकी बॉडी में आठ अंग हैं, हमारी बॉडी में जो हमारा शरीर है ना उसमें आठ अंग हैं। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है, ऐसा हमारी बॉडी सेल से बनी, कोशिकाओं से बनी हुई है। और हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं होती हैं पता है आपको? एनी आइडिया? कितनी? 10 अरब। बस 10 अरब नहीं, 70,000 बिलियन, मैं 70 to 80 trillion होती हैं, ट्रिलियंस। एक बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। एक बिलियन में कितना होता है? एक बिलियन में 1 बिलियन इसको 100 करोड़, राइट। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है अभी? 6.5 बिलियन, मतलब 650 करोड़ लगभग। ठीक है, तो 70,000 बिलियन हमारी बॉडी में सेल्स है, और बॉडी की हर सेल सांस लेती है, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन लेती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। अगर एक भी विटामिन कम हो गया ए बी सी डी ई में से तो उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, इसमें से कोई चीज कम हो गई तो उसमें सिम्टम आ जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो वो सेल्स इनको लेती है, उसको यूज करती है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। तो ये हमारी बॉडी में 70,000 बिलियन सेल्स में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसको स्ट्रेस पैदा करते हैं, राइट। एक्सटर्नल चेंज, फैमिली में कुछ चेंज हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, माता पिता बीमार हो जाए, कोई कुछ और प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी मतलब ऐसी कुछ अल्टरेशन हो जाए, जॉब पे कुछ, जॉब प्लेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे अभी हुआ वहां पर, हुआ ना अभी जयपुर में, जयपुर के आसपास दौसा में हुआ है ना, उसमें खाली दौसा पे इफेक्ट नहीं हुआ, पूरे देश पे इफेक्ट हुआ, राइट। एनवायरमेंटल चेंज हो जाए, बहुत गर्मी हो जाए, बहुत सर्दी हो जाए, फाइनेंशियल कुछ चेंज हो जाए, इनकम टैक्स के रूल्स कुछ चेंज हो जाए, कुछ कुछ भी मतलब एनीथिंग, नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाए, कहीं तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, लीगल चेंजेस हो जाए, नेशनल चेंजेस कुछ हो जाए, इंटरनेशनल चेंजेस हो जाए, ये सब स्ट्रेस के कारण, राइट, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। जब ये रेशियो एक से अधिक हो जाता है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं, अर्थात जब प्रेशर्स इनर स्ट्रेंथ से अधिक बढ़ जाते हैं तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। जब तक आपकी इनर स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है प्रेशर से, तब तक आप स्ट्रेस फील नहीं करते। ठीक बात है, एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे आज से 4 साल पहले आम आदमी के पास प्रेशर्स तो थे, आज से भी ज्यादा थे, आज साधन नहीं थे, पहले कारें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, मकान भी बहुत अच्छे नहीं थे, रोड्स भी बहुत अच्छे नहीं थे, प्रेशर्स बहुत सारे थे, पैसा भी कम था, किंतु लोग स्ट्रेस में नहीं थे, आम आदमी खुश नजर आता था। क्यों क्यों था? इनर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, आंतरिक शक्ति ज्यादा थी। आप अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने पेरेंट्स को, और आज अपने आप को देखिए, उनको ज्यादा स्ट्रेस थी या आपको ज्यादा स्ट्रेस है? क्यों?
उनकी
इनर स्ट्रेंथ ज्यादा थी। वो आप अपने बच्चों से आप वो आपसे कितना गुस्सा करते थे, आपने अपने बच्चों से कितना गुस्सा करते हैं? हो सकता है आपके जीवन में पूरे जीवन छोटेपन में, मतलब जब तक आप 20 साल के होते, शायद मां बाप ने कभी आपको एक थप्पड़ ना मारा हो, शायद अधिकतर का एक्सपीरियंस होगा। किंतु आज अपने बच्चों से आप कैसा बिहेव करते हैं? आपका हाथ कैसे चलता जल्दी जल्दी, है ना? नहीं, हाथ और मुंह दोनों, आंखें भी चलती हैं, आंखें भी चलती हैं, मुख भी चलता है और हाथ भी चलते हैं, नहीं चलते? और आप माता पिता कितने चलते थे, यही आप एक मेजरमेंट कर लीजिए, ठीक है? एम आई राइट? रीजन क्या है? इनस्टेंट। प्रेशर्स तब भी थे, इंटरनल प्रेशर भी थे, एक्सटर्नल प्रेशर भी थे, है ना? किंतु इनर स्ट्रेंथ अधिक थी। आउटर स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक तो आउटर स्ट्रेंथ क्या माना, बॉडी की स्ट्रेंथ। ऐसे मैं आपको बताऊं, एक पीछे अभी यहां पर हमारे यहां एक स्पोर्ट्स विंग भी है, तो उसमें पावर जो बॉडी थे जो ऐसे दिखाते हैं मसल्स को, इस तरह से दिखाते हैं, फिर इस तरह से दिखाते हैं, फिर इस तरह से, वो मिस्टर इंडिया भी था उसमें, तो उनका अच्छा ग्रुप था, उन्होंने स्टेज पर शो भी किया, उसका एक क्लास मैंने भी लिया था। तो मैंने पूछा उससे, उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोगों को तो कभी स्ट्रेस होती नहीं होगी कि आप तो इतने मोटे ताजे, इतने शुद्ध, इतने आपकी बॉडी इतनी सुंदर है, लोग ताली बजाते हैं। तो हमें डॉक्टर साहब, हमें तो इतनी स्ट्रेस होती, बात मत पूछो, हम तो बहुत टेंशन, सारा टाइम टेंशन में रहते हैं। मैंने कहा आपको टेंशन क्यों होती है? कहते हमको एक एक मसल निकालनी होती है ना, उसकी टेंशन होती है, ये हमारा कोच है ना, ये हमको बहुत टेंशन में लाता है, तो कई बार तो दिल करता है हम इसकी पिटाई कर दें। तो आउटर स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ठीक है? फिर तो रेसलर्स को स्ट्रेस होती नहीं, एथलीट्स को स्ट्रेस होती नहीं, इजंट इट? तो इनर स्ट्रेंथ की बात है। जैसे एक एक मैं और एग्जांपल देता हूं, आपके पास घर में सब कुछ है, कार भी है, अच्छा घर भी है, टेलीविजन भी है, एसी भी है, सब कुछ, एवरीथिंग, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, तो भी आप स्ट्रेस में रहते हैं। और एक आदमी जो कि हिमालय पे बैठा है, ठीक है, हिमालय पे बर्फ आसपास पड़ी हुई है, वो एक कपड़े में बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है क्या? वो क्यों मुस्कुरा रहा है, पागल है क्या? उसको प्रेशर नहीं है क्या? उसको प्रेशर नहीं है क्या? आपको खाने, उसको खाने को भी चाहिए, खाना भी खाएगा, वहां से आसपास सांप भी निकलते हैं, ठंडी भी पड़ रही है, 6-7 डिग्री टेम्परेचर है, वो एसी, वो हीटर लगा के बैठा चारों तरफ क्या गर्मी के लिए, या कपड़े बहुत सारे गरम गरम कपड़े पहन के बैठा है, या उसकी बीवी है, उसके दोस्त के नौकर चाकर उसको खाना बना के लाके देने वाले हैं, शेर भी निकलते हैं, भालू भी निकलता है, है ना, रात को ऊपर छत भी नहीं है उसके, आपके पास सब कुछ है तो भी आप स्ट्रेस में हैं, और वो स्ट्रेस में क्यों नहीं है? हैं जी, स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि आपको, आप अपने कमरे में बैठे हो तो भी उदास बैठे हो, नीचे गर्दन के यूं करके बैठे हो, है ना, सोच रहे हो, और वो ऐसे बैठा और मुस्कुरा रहा है। जितने भी यहां रहते ना, अपने ज्ञान स्वरूप भाई बहन देखे ना, जो सेवा कर रहे हैं, किसी का बैंक बैलेंस नहीं है, किसी के बैंक में, बैंक अकाउंट में नहीं है, और तो छोड़िए आप, ठीक है, तीन जोड़ी कपड़े होते हैं, ठीक है, तीन चार जोड़ी कपड़े, बस और कुछ नहीं होता है ना। तो आपने देखा उनको, देखा उनकी शक्ल कैसी होती है, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, तो उनको उनको प्रेशर नहीं होता है क्या? आपके घर में अगर 15 मेहमान आ जाएं तो आपको क्या होगा, है ना? और आप 500-600 आए तो उनको उनको क्या होता है, उनको मैनेजमेंट नहीं करनी होती क्या?
वो समर्पण
तो आप समर्पण नहीं हुए, नहीं, बात सिर्फ क्या है, मतलब मैं आपके सामने जो पॉइंट लाना चाहता हूं वो बार बार इससे ला रहा हूं कि सब कुछ सेम है। सब्जी जो आती है ना, जो सब्जी मार्केट में आती है ना, जो आप मार्केट से लेकर खाना बनाते हैं, यहां भी खाना बनाना पड़ता है, उसमें तेल भी डलता है, उसमें मिर्च भी डलती है, नमक भी डलता है, सब कुछ, सब मसाले भी डलते हैं ना,
सिस्टम है, वो अकेले काम नहीं कर रहे,
तो आपके घर में सिस्टम नहीं है क्या?
एक अकेली औरत तो बनाती है।
यहां भी ऐसा है, यहां भी लिमिटेड लोग हैं। अगर आप खाना बनाने वाले देखें, लिमिटेड लोग हैं। नहीं, आपके पास सब वो साधन है। नहीं नहीं, आप 15 लोग को छोड़ो, आप दो, मैंने तो देखा है परिवारों में, देखा है सिर्फ तीन लोग हैं, तीन लोग, एक पति है, एक बच्चा है और एक खुद है, तो भी उनको खाना बनाने में, तो भी पत्नी क्या बोलेगी, थाली लेके आ जाओ अपनी, वो कहती मैं तुम्हारी नौकर लगी हूं क्या, है ना। आप खाना के ऐसे बैठ गए, अपनी थाली खुद ले लो, मतलब वो भी मतलब एक तरह जैसे ना अंदर, जैसे एक तरह से अंदर की वो है ही नहीं, जैसे मतलब ईगो है ना, वो एक क्लैश जैसे, हालांकि होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना परिवारों में, जैसे आपस में एक दूसरे के प्रति भावना, वो है ही नहीं, इनर स्ट्रेंथ है ही नहीं, मतलब मैं परिवार खाली पत्नी की बात नहीं, पति की भी ये हालत है ना। तो टोटल मतलब ये क्या हो रहा है परिवारों में, स्ट्रेस क्यों बढ़ रही है, तीन लोग हैं, 30,000 रुपए आमदनी है, तीन लोग 30,000 रुपए आमदनी है, फिर भी टेंशन है ना। तीन लोगों के पास 6 मोबाइल फोन है, तो भी आपस में बातचीत नहीं करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, तीन लोग दूसरों से बातचीत करते, आपस में बातचीत नहीं करते हैं, आपस में बैठे, तीन लोग बैठे, मां बैठी है, बेटा बैठा और पत्नी बैठी है, मां बेटा और बाप है ना, तीनों बैठे हैं, वो उससे, वो अपने उससे बात कर रहा है, वो अपने उससे बात कर रहा है, तीनों आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये है, when pressures are less than inner strength, it is you stress. जब प्रेशर तो लाइफ में आवश्यक है, आपको सुबह से कुछ काम ही करने को ना हो तो क्या होगा, आप सोते ही रहेंगे। प्रेशर मतलब थोड़ा चैलेंज तो चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है, किंतु अगर प्रेशर्स लाइफ में है तो थोड़े प्रेशर तो ठीक है, कितने, जितनी इनर स्ट्रेंथ से कम है, तो दैट इज यू स्ट्रेस, दैट इज अ चैलेंज। और अगर व्हेन प्रेशर्स आर मोर देन द इनर स्ट्रेंथ देन इट इज डिस्ट्रेस, तब डिस्ट्रेस है, तब रियल स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस से क्या होता है, पहले मेंटल डिसीज होती है, पहले मन में डिसीज, जो वर्ड है ना वो डिजीज वर्ड नहीं है, रियल वर्ड इज डिसीज, राइट। आजकल फास्ट जमाना ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिजीज, रियल वर्ड इज डिसीज, डिसीज माना लॉस ऑफ ईज, मतलब शांति की कमी, शांति का भंग हो जाना, आसानी का भंग हो जाना। तो पहले मन में होता है और मन के बाद फिर तन में होता है, फिर फिजिकल बॉडी में होता है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, यू स्ट्रेस माना गुड, यू माना गुड, वो गुड है, वो गुड मतलब इट्स गुड फॉर द बॉडी, गुड फॉर द माइंड, राइट, इट्स अ चैलेंज। अब देखिए प्रेशर आते कहां से है, पहले हम प्रेशर देखेंगे, प्रेशर कहां से आता है, और फिर दूसरे देखें इनर स्ट्रेंथ कहां से आती है। तो हमें प्रेशर्स को कम करना है, इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो क्या होगा, और इनर स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा सकते हैं, इनर स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा सकते हैं, प्रेशर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, कई बार प्रेशर तो मॉडिफाई होते ही नहीं है। अब देखिए इंटरनल प्रेशर है आपका, आपका स्वभाव है, आपका मन, आपके विचार है, कई बार पुरानी स्मृतियां, बचपन से आप जब से पैदा हुए, आपकी माता जी बहुत गुस्से वाली थी, बहुत सेंसिटिव थी, पिताजी बहुत गुस्सा करते थे, या आपके टीचर बहुत मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, है ना, भाई थे, आप सबसे परिवार में छोटे थे, आपके बड़े भाई बहन थे, आप छोटे थे, सबके सब लोग आपको डांट मारते थे, है ना। तो वो जो भी मन में मेमोरीज हैं उसको आप बदल सकते हैं क्या, एटीट्यूड तुरंत तो नहीं बदल सकते हैं, एटीट्यूड्स को नहीं बदल सकते हैं तुरंत, भावनाएं भी हैं वो तुरंत नहीं बदली जा सकती हैं, संकल्प भी नहीं बदले जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी में आपको कोई डिफेक्ट है, हार्ट में, हार्ट की तकलीफ है, एसिडिटी की बीमारी है, या कमर की तकलीफ है, कमर का आपका मन का हिल गया है ना, डिस्क हिल गई है, या नी ज्वाइंट खराब हो गए हैं, या आपको हाई ब्लड, तुरंत तो नहीं ठीक कर सकते। तो प्रेशर्स मे और मे नॉट बी मॉडिफाइबल, है ना, आपकी वाइफ है जिससे आपकी बनती नहीं है, या पति है आपका, वो आपकी मानता नहीं है, है ना, बच्चे हैं जो कि आपके आज्ञा पे नहीं चलते हैं, या आपकी सास है ऐसी है जो कि आपको बार बार डांटती रहती है, आप सास को बदल सकते हैं, पति को बदल सकते हैं, पत्नी को बदल सकते हैं, बच्चों को बदल सकते हैं, मॉडिफाई भी तुरंत नहीं कर सकते ना। तो ये चीजें मॉडिफाई नहीं हो सकती, या बहुत देर में मॉडिफाई होती, किंतु एक वे चीज आपके हाथ में है, वो क्या है, इनर स्ट्रेंथ, है ना। इनर स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं इनर स्ट्रेंथ को, बेहद में जा, बेहद तक बढ़ा सकते हैं ना, और बेहद अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो जब आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ गई तो प्रेशर कितना भी हो, इनर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आपको, आप उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कितना भी प्रेशर हो, इनर स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यहां ब्रह्मा कुमारीज में आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति, लगभग सभी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कभी भी स्ट्रेस में नहीं आते हैं, स्ट्रेस फ्री है। आपने कभी नहीं, कभी आपने बेगमपुर देख, बेगमपुर नाम सुना है, बेगमपुर, यस, बेगमपुर सुना है कभी आपने, देखा है बेगमपुर कभी, कहां पर है बेगमपुर, मेरठ में, हाँ ये ज्ञान सरोवर तो बेगमपुर है ना, यहां कोई गम है क्या, गम है यहां पर, और आप कौन है, आप बेगमपुर के बादशाह हैं, आप तो, आपको कुछ बनाना है क्या, खाना भी नहीं बनाना, बनाना सिर्फ खाना है और सुनना है और सोना है, तीन ही तो काम है ना आपके, तो आप बेगमपुर के बादशाह हो गए ना, राइट। तो याद रखना आप कौन है, बेगमपुर के, तो अब याद रखना कि हम, आप अपने घर को भी जाके क्या बनाना है, आपको बादशाह नहीं बनाना है, बेगमपुर बनाना है, क्या बनाना है, बेगम का मतलब वाइफ से नहीं है, ठीक है ना, बेगम माना बेगम, जहां कोई स्ट्रेस ना हो, जहां पे कोई भी गम ना हो, राइट। तो हम देखते हैं प्रेशर का सोर्स क्या है, प्रेशर कहां से आते हैं, प्रेशर कहां से आते हैं बताइए। प्रेशर आने के तीन कारण हैं मुख्य, हम देखेंगे। सबसे पहली जो चीज है, इसको अगर हम, पहला जो कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, प्रेशर का कारण है हमेशा डर, फियर, इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी। जो चीज जहां डर होता है, जहां आपको इनसिक्योरिटी लगती है, असुरक्षा लगती है, और जहां आपको अनस्टेबल चीज है, हिलती रहती है, या आज कैसी है कल कैसी है, उससे ही हमको प्रेशर आते हैं। जैसे कि बॉडी, ये देह है, हमारा शरीर है, या हमारे संबंध है, वो कैसे होते हैं, स्टेबल है क्या, आज है कल कैसा है, आज आप बिल्कुल ठीक ठाक है, एकदम ठीक ठाक, अचानक हार्ट अटैक आने से पहले क्या आपको एक ईमेल आता है क्या पहले, कि मैं आपके पास आ रहा हूं, आता है किसी के पास, या मृत्यु आने से पहले ईमेल आता हो मृत्यु का, कि भाई मैं आपके पास फला टाइम क्यों, आज शाम को 9:45 पे आने वाली, ऐसे आता है क्या। तो कोई भी चीज है वो आपको अचानक, कुछ भी हो जाता अचानक से। अभी शायद अभी जैसे एक फिल्म, मैं अभी बॉम्बे में था कुछ समय पहले, तो एक फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट डायरेक्टर था, 31 साल का, अभी भी उसने शायद मूवी अभी उसकी बनी थी, एंड मतलब मॉर्निंग से 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, घर से निकला, हार्ट अटैक आया, खत्म। मतलब बिल्कुल जैसे एकदम अनसर्टेनिटी ना, इस बॉडी के बारे में, आज कैसी आपकी, आज आप शक्ल देखो अपनी, 10 साल के जब थे ना आप, तो आपकी फोटो, अपनी शक्ल देखो और आज शक्ल देखो, फर्क है वैसी है, अपनी माताजी की फोटो देखो आज से 20 साल पहले और अभी की देखो, तो उनको, उनको देखो, तो मतलब टोटल बॉडी जो है अनस्टेबल है। ठीक है, इसमें फियर भी है बदलने का, बीमारी आने का, मरने का भी डर है, और तो ऐसे संबंधों का भी है, आज आपको, आज आज जिससे आपकी शादी हुई है, जिससे आपकी दोस्ती है, आज आपके साथ बहुत अच्छा है, कल कैसा होगा पता नहीं। तो अपने आप को बॉडी, जब आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, आपकी मन में, आपकी टीम में, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके एटीट्यूड में और आपकी स्मृति में ये बॉडी आ जाती है, या बॉडी के संबंध आ जाते हैं, देह के संबंध आ जाते हैं, तो क्या होता है, तो फिर आपको प्रेशर फील होते हैं, अर्थात फियर, इनसिक्योरिटी, अनस्टेबिलिटी होती है। और जब आप ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हैं, हम में से कोई क्या बिजनेसमैन पैदा हुआ था क्या, डॉक्टर पैदा हुआ था क्या, ऐसे रिलेशनशिप्स, मां हूं, बाप है, पति है, पत्नी है, कोई बाप पैदा हुआ था क्या, पत्नी पैदा हुई थी क्या? तो वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन सभी जानते हैं मैं समझता हूं, अमिताभ बच्चन जब एक, आपने सुना दो फिल्म बन रही थी, शहनशाह और कुली, सुना आपने दो फिल्म? तो फिल्म शहनशाह की शूटिंग सुबह होती थी मॉर्निंग आवर्स में, और लंच के बाद कुली की शूटिंग होती थी। तो अमिताभ बच्चन क्या है, शहनशाह था कि कुली था, क्या था वो? अभिनय कर रहा था ना। ऐसे ही आप जो होते हैं, जब आप होते हैं ऑफिस में होते हैं तो क्या होता है, सब आपको नमस्ते करते हैं, सलाम सलाम करते हैं ना। सुबह के टाइम ऑफिस में क्या है, आप शहनशाह, और घर में आने के बाद अगर वहां पे शहनशाह का रोल करने की कोशिश करते तो क्या होगा, तो आप ना शहनशाह ना कुली हैं, ठीक है, राइट। जब आप अपने आप को शहनशाह समझते तो ईगो आ जाती है, ठीक है, फिर टेंशन, और घर में आकर कुली बनना पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो आप ना शहनशाह, अरे अपने आप को समझना है कि मैं ना मां हूं, ना बाप हूं, ना पति हूं, ना पत्नी, आई एम ए सोल, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए मदर, ए वाइफ, और ए हस्बैंड, और ए फादर, और ए डॉक्टर, और इंजीनियर, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा हूं, साथ साथ में एक पति भी हूं, पिता भी हूं, दोस्त भी हूं, किसी का बेटा भी हूं, किसी का भाई भी हूं, इजंट इट? बट आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए फादर, आई एम नॉट ए हस्बैंड, ठीक है। तो ये पक्का करने की आवश्यकता है। अगर अपने आप को रोल समझेंगे तो क्या होगा, फिर प्रेशर आएंगे, फिर उसमें फियर आएगा, फिर इनसिक्योरिटी आएगी, फिर अनस्टेबिलिटी आएगी, और उससे क्या होगा, फिर प्रेशर आएगा। इसी तरह से मटेरियल कॉन्शियस, आपके घर में कार है या कोई भी चीजें, घर की चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, अगर उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं आपकी मन में, आपकी टीम में वो मटेरियल घुस जाता है, कार घुस गई, मकान घुस गया, है ना, तो आपकी बुद्धि में वही विचार चलेंगे, वही भावना, वही एटीट्यूड, वही स्मृति में चलेगा, और उससे फिर क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, फियर आएगा, और फिर प्रेशर आएगा, राइट। और उससे फिर टाइप ए, फिर इससे ये नेचर बनती है टाइप ए नेचर। टाइप ए मना प्रेशर, प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ ओन हैबिट्स, और उससे फिर आपको क्या होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन भी क्यों होता है, उदास क्यों होते हैं, इस कारण से उदास होते हैं, जिस संबंध में आपने अपना जीवन लगा दिया, जिस बच्चे को आपने पाल पोस को बड़ा करने में बड़ा टाइम लगा दिया, और बड़ा होकर क्या बोलता है, पापा आपने मेरे लिए किया क्या है, वो ना डिप्रेशन हो गया, नहीं हो गया, ये तो आपने क्या किया, सभी करते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है, बल्कि आपने मेरी परवरिश ठीक ढंग से नहीं की है, ऐसा बच्चे बोल देते हैं आजकल, नहीं बोलते, मेरे दोस्त के पास इतना है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चे आजकल बोल देते हैं। एंगर क्यों होता है, आइसोलेशन की फीलिंग, अकेलेपन की फीलिंग, सेंसिटिव एनिमल। आजकल देखिए आप जरा, मां बाप बच्चों को बड़ा करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, ठीक है, सब टाइम हो जाता है, किंतु उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, शादी होने के बाद क्या करते हैं, तुरंत सभी जानते हैं, आप भी अलग हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, मां बाप सारी उस छोटे बच्चे को देखते रहते हैं, आप भी अपने बच्चों को देख रहे हैं आज कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, 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 फिर क्या होता है, बड़ा होते ही फिर उड़ जाता है ना, फिर आइसोलेशन फीलिंग होती है ना। सेंसिटिव एंड इमोशनल बिहेवियर क्यों होता है, सिनिसिज्म क्यों होता है, हॉस्टिलिटी क्यों होती है, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट क्यों होता है, ये सब इसी कारण से हो रही है, इसकी जड़ ही है बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस और मेटेरियल। ये तीनों क्या चीजें हैं, आउटर सेल्फ है, अंदर की बात है क्या, बॉडी अंदर की बात नहीं है, बाहर की बात, रोल क्या है वो भी बाहर की बात है, मेटेरियल क्या है वो भी बाहर की बात है, नाम ये लेके ना हम बॉडी लेके आए थे ना बॉडी लेके जाएंगे। कोई आदमी देखा मरते हुए अपनी बॉडी को साथ ले जाता हूं, या अपनी पत्नी को साथ में ले जाता हूं, दो चार बच्चों को साथ में ले जाता हूं, अपनी कार को साथ में ले जाता हूं, नहीं कोई लेके नहीं जाता ना। तो ये जो है ये सब के सब यही रहने वाले, तो ये आउटर सेल्फ है, इनर सेल्फ नहीं है, और व्हेन प्रेशर एक्सीड इन द स्ट्रेंथ डिस्ट्रेस होती है और मेंटल, इससे फिर वही सेम बात, मेंटल डिसीज, फिजिकल डिसीज, इससे फिर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, ज्वाइंट, जोड़ों में दर्द होता है। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं हार्ट की आपको बात करता हूं, हार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है। हार्ट हमारा एक मिनट में 70 बार धड़कता है, और जो हमारी हार्ट की जो टोटल बॉडी में पाइपलाइन है ना, आठ सब आर्टरीज को जोड़ देखते सर एक साथ, तो 60,000 लंबी माइप 60,000 माइल 7,000 मील लंबी पाइपलाइन बन जाती है। धरती का पूरा सर्कमफेरेंस कितना है? 30,000 माइल। अर्थात आपका हार्ट वो काम करता है कि एक मिनट में 70 बार 60,000 मीटर माइल पाइपलाइन में ब्लड की सप्लाई करता है। सुना आपने ऐसा कभी पंप, ऐसी मोटर सुनी है? पूरी पृथ्वी पर जो सप्लाई करे, पूरी पृथ्वी के सर्कमफेरेंस में सप्लाई करते, उससे भी डबल, एक मिनट में 70 बार, एक साल एक दिन में 1,00,000 बार, और कभी बंद ना हो। आप सो जाते हैं, अगर आपका हार्ट भी सो जाए 5 मिनट तो क्या होगा? आप 8 घंटे सोते हो ना, वो भी कहेगा पाए तो आदमी सो रहा है, 5 मिनट मैं भी सो लेता हूं, ठीक है, फिर क्या होगा? ये हार्ट की जो तीन आर्टरीज हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एलईडी और पीछे एलसीएक्स, जब आर्टरीज ठीक ठाक है तो ब्लड सप्लाई ठीक हो रही है, किंतु जब ब्लॉक हो जाती है तो फिर देखिए कितनी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इसी को हार्ट की बीमारी कहते हैं, आर्टरीज का ब्लॉक हो, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है इनमें, तो इसे हार्ट की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जो नॉर्मल जो हार्ट की आर्टरी इलास्टिक होती है, जब हमें जब दौड़ते हैं या हमारे फिजिकल दौड़ते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, और जब या मेंटल स्ट्रेस होती है, जल्दी करना पड़ता है, जल्दी करने का स्वभाव है, गुस्सा आ रहा है, तो उस समय हमारी जो नॉर्मल आर्टरी जब इलास्टिक रहती है तो उसमें नॉर्मली हमारे हार्ट को 250 ml ब्लड एक पाव खून चाहिए। हार्ट का वजन कितना है? 1 पाव, लगभग एक मुट्ठी के बराबर ऐसे होता है हार्ट के। उसको खून भी कितना चाहिए? 1 पाव एक मिनट में, ठीक है, किंतु डिमांड के समय ये 1500 ml तक बढ़ सकता है, 1500 ml ना 1.5 लीटर के आसपास। किंतु जब हमारी आर्टरीज स्ट्रेस की वजह से जल्दी चिंता गुस्सा करने से हमारी आर्टरी स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग करने से भी हार्ड हो जाती है, तो 1 साल की उम्र हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, धीरे 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 वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, और जब आर्टरीज 70% ब्लॉक हो जाती है तो हमें छाती में दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आर्टरी अभी स्टिफ थी, पहले इलास्टिक जैसी थी, अभी प्लास्टिक जैसी हो गई, अर्थात डिमांड होने पर वो आर्टरीज डायलेट नहीं होती है, फैल नहीं पाती। जब वो डिमांड तो बढ़ी किंतु सप्लाई नहीं बढ़ी तो छाती में दर्द हुआ, और किस दिन होगा पता नहीं। 25 साल के आदमी को, अभी आपने आपने सुना होगा, वोकार्ड हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल का ग्रुप है भारत में बहुत बड़ा, 1,00,000 लोगों ने सर्वे किया, 25 से 35 साल के लोगों का, तो उसमें पाया कि इस 25 से 35 साल के ग्रुप में 100 में से 67 लोगों को लगभग 2/3 लोगों को हार्ट अटैक होने का हाई रिस्क है। 67% 25 से 35 साल के ग्रुप में 100 में से 67 लोगों को हार्ट अटैक होने का हाई रिस्क है, ठीक बात है? आप में से कितने लोग हैं जो 25 साल से ऊपर हैं? सभी, लगभग सभी। तो कितना रिस्क है हार्ट अटैक होने का? 67% है ना। अर्थात इतनी मतलब आर्टरीज इस समय ब्लॉक हो जाती हैं कि वो कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, बहुत ज्यादा उदासी आ गई, तो अटैक आ सकता है। और 50 साल की उम्र के बाद एक सर्वे हुआ, वो अमेरिका में सर्वे हुआ था, जो ऑटोप्सी करते हैं, मरने के बाद ऑटोप्सी करते हैं ना डेड बॉडी की, तो उन्होंने देखा कि 100 में से 85 लोगों की आर्टरीज ऑलरेडी ब्लॉक है, और 60 ईयर्स के आसपास, अगर 60 के ऊपर अगर हम लेते हैं तो 100 में से 95% लोगों के आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होते हैं। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका, कि जिसके पास भी हार्ट है उसको क्या रिस्क है? हार्ट अटैक होने का रिस्क है। अगर आपके पास हार्ट नहीं है तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, ठीक है? तो हार्ट अटैक होने का रिस्क जो है वो इतना अधिक है अगर आप टेंशन में रहते हैं तो। अगर आप टेंशन फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें तो क्या होगा, आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। जैसे आपको बताया 1960 में 100 में से एक आदमी को हार्ट अटैक होता था। हाँ, काफी कम है, किंतु कारण क्या है कि कुछ जीन्स, आज तो सपोज आज आप बीके बन गए, है ना, बीके बना आज से आपने शुरू किया, किंतु कितना देर आप मॉडिफिकेशन में लगता है आपको, क्योंकि आपको खुद को करना है ना, इनर स्ट्रेंथ तो आपको बढ़ानी है। आपने आज आपने कॉलेज में दाखिला लिया, किंतु पढ़ाई आप करते नहीं करते वो आपके ऊपर निर्भर है ना, है? तो कितना असर तो पड़ता है, तुरंत असर पड़ता है, किंतु कितना आप करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अभी उसका असर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो राजयोग करने से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं भी वो कैसे पिघल जाते हैं, मोम की तरह पिघल जाते हैं, है ना। अगर आप इनर सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं तो, सोल कॉन्शियस रहते हैं तो ये है ब्लॉकेज, राइट। और जब ये ब्लॉक क्रैक हो गया डर की वजह से, गुस्से की वजह से, या चिंता की वजह से, क्लॉट बना और क्लॉट से हार्ट अटैक हुआ। जो क्लॉट, कभी भी हार्ट अटैक ब्लॉक से नहीं होता है। अगर आपकी आर्टरी 100% ब्लॉक है तो भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, क्लॉट बनेगा तो हार्ट अटैक आएगा। क्लॉट क्यों बनेगा, जब ये आर्टरी अंदर से क्रैक होगी। क्रैक क्यों होगी, क्रैक होगी डर से या गुस्से से या चिंता से या उदासी से। तो अगर आप डर अपने मन से निकाल दें, चिंता निकाल दें, गुस्सा निकाल दें, उदासी निकाल दें, तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, राइट। तो आज की क्लास में आप हार्ट अटैक से भी मुक्त हो सकते हैं, भले हार्ट आपके पास है, भले हार्ट है आपके पास है और आर्टरी बड़ा भी है, ब्लॉक भी है आपकी आर्टरीज, जरूर ब्लॉक होंगी, किंतु आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। किंतु क्यों नहीं, कब नहीं आएगा, क्योंकि जबकि आप आज से क्या हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस रहेंगे, तो इनर सेल्फ कॉन्शियस रहेंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगर बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, रोल कॉन्शियस या मटेरियल कॉन्शियस रहेंगे तो हार्ट अटैक, अगर आपके पास हार्ट अटैक तो हार्ट है तो जरूर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो हमारी नॉर्मल आर्टरीज की, इसका ही क्रॉस सेक्शन काट के बताया, ये अंदर की लाइनिंग है, इसको एंडोथेलियम कहते हैं। और ये दो तरह कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक ये दिखा रहे हैं, ये जो तीन के जो रेशियो में दिखाया गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये अकेला अकेला दिखाया, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। बैड बैड क्यों कहलाता है, क्योंकि नसों में चिपक जाता है, आर्टरीज को ब्लॉक करता है। गुड वाला इसलिए गुड है क्योंकि वो नसों में ब्लॉक नहीं करता है। अभी जो एंडोथेलियम है, अब जो खून जो बह रहा है वो चिपकता क्यों नहीं है आर्टरीज की दीवार पर, क्योंकि उसमें गैस निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। जब आप एक सिगरेट पीते हैं तो 40 मिनट के लिए गैस निकलनी कम हो जाती है, अर्थात 40 मिनट के लिए कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरी में जाना शुरू कर देता है। और जब आप एक वक्त गुस्सा करते हैं तो 72 घंटे के लिए कोलेस्ट्रॉल या दीवार से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलनी बंद हो जाती है, अर्थात 72 घंटे के लिए कोलेस्ट्रॉल अंदर जाता रहता है, राइट। तो इसलिए गुस्सा करना बहुत जरूरी है, आप करते रहना, आपकी आर्टरीज भी ब्लॉक होती रहेंगी और हार्ट अटैक जल्दी आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा गुस्सा आप जरूरी समझते हैं ना, तो करते रहना, पर एक चीज है, वो हार्ट अटैक भी आएगा। इसलिए या आप, आपके ऊपर डिसीजन है, आप गुस्सा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो हार्ट अटैक आएगा, नहीं करना चाहते तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, नहीं फिर नहीं आएगा। तो ये जो है एंडोथेलियम जो है, इसको ये जो आर्टरीज को ब्लॉक करती है, इसके सारा टोटल बात इसी के ऊपर है। और कोलेस्ट्रॉल भी कहां से आता है, 25% कोलेस्ट्रॉल आप खाने में खाते हैं, पराठा पकोड़ा समोसा मिठाइयों के रूप में, आइसक्रीम के रूप में, ठीक है। और गुड कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है, 25% गुड वाला आता है सब्जियों से, फलों से और अंकुरित से और बादाम अखरोट से, ड्राई फ्रूट से। और 75% कोलेस्ट्रॉल लिवर में बनता है। अगर आप जल्दी में हैं, चिंता में हैं, गुस्से में हैं, उदासी में हैं, तो बैड वाला बनता है। अगर आप शांत रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, खुशी खुशी में रहते हैं, तो अच्छे वाला बनता है। अर्थात 75% कोलेस्ट्रॉल कहां से आ रहा है, बैड वाला, मन से आ रहा है, ठीक है। और 25% कहां से आ रहा है, मुख से आ रहा है। और मुख में भी कहां से जा रहा है, पहले मन में आएगा, सीधा आ जाएगा मुख में। पराठा पहले अपने आप आएगा कि पहले मन में आएगा, है ना। मूड डिसाइड्स योर फूड, हमेशा मूड, अगर आपके मन में कड़वाहट है तो आप मीठा खाएंगे, जबरदस्ती खाएंगे, रात को चोरी करके भी खाएंगे, डायबिटीज होने के बाद भी खाएंगे। अगर आपका मन अंदर से ड्राई फील कर रहे हैं, बहुत सूखापन फील कर रहे हैं, बहुत रूखापन फील कर रहे हैं, तो आप फ्राइड खाएंगे, है ना, ठीक है, परवश होके खाएंगे। अगर आपका मन खुश है तो आपको फ्राइड खाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका मन में मिठास है तो आपको मीठा खाने की आवश्यकता ही नहीं। डायबिटीज बनने का कारण भी यही है, बिटरनेस। बटर आपकी जीन्स माता पिता से मिले हैं, आपको लाइफ में बिटरनेस मिल रही है तो आपको डायबिटीज हो जाती है। संबंधों में बिटरनेस है, कड़वाहट है, तो डायबिटीज हो जाएगी। पर जीन्स माता पिता, अगर अगर आपके संबंध में माता पिता को दोनों को डायबिटीज है, किंतु आपके संबंधों में आपस में मिठास है, प्रेम है, शांति है, खुशी है, तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये देखिए, जब जब ये आर्टरी 70% ब्लॉक हो गई, सिर्फ इतना सा रास्ता बचा तो छाती में दर्द होता है, और जब ये दीवार क्रैक हो गई, क्लॉट बन गया, तो हार्ट अटैक हुआ। उसका कारण मैं क्या बताया, जल्दीबाजी, प्रेम की कमी, अकेलेपन की फीलिंग, गुस्सा, ईगो, फियर एंड इनसिक्योरिटी, उससे ब्लड क्लॉट बनता है। और अगर इस दीवार को, ये जो दीवार है ना, ये दीवार, ये बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आज आपके घर में रॉयट हो जाए, आज आपके एरिया में जहां रॉयट हो जाए हिंदू मुसलमान के, हिंदू मुस्लिम के, तो आप क्या करते हैं, तो क्या करेंगे आप बताइए। जैसे ड्राइंग रूम में आप एक कंकर भी रखना पसंद नहीं करते, एक कंकर या एक पत्थर का टुकड़ा भी रखना पसंद नहीं करते, उसमें क्या करते हैं आप, सड़क से उठा करके पत्थर, रोड़े, ईंट भर लेते हैं, ड्राइंग रूम में रख लेते हैं, लाठी, डंडे, ऐसे ऐसे उठा उठा के रख लेते। क्यों? अगर किसी ने अटैक किया तो क्या करेंगे, बदला लें, या उसको भी, हम भी अटैक कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में रखते हैं। और जब वो लड़ाई पूरी हो जाती तो फिर क्या करते हैं, फिर संभाल के रखते हैं, रखे रहे भले, कोई हर्जा नहीं, फिर उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ये भी क्या है, जब आपके अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन, ये टाइप है बिहेवियर क्या है, चिंता क्या है, गुस्सा क्या है, ये भी इमरजेंसी है, ये भी रॉयट है, अंदर रॉयट हो गया ना आपका, ये क्या हो गया अंदर, गुस्सा करना क्या है, ये रॉयट नहीं है क्या, जल्दीबाजी करना क्या है, चिंता करना क्या है, ये भी तो रॉयट नहीं है अंदर क्या, है ना, एक प्रकार झगड़ा है ना अंदर। तो उस समय क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल से 9 कैलोरीज मिलती है, 1 ग्राम फैट से, मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज से 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है। अगर आज मार्केट में जा रहे हैं आप, और मार्केट में जाते, रास्ते में जाते जाते आपको पता लगे कि आज हिंदू मुझे भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो गया आपस में, पाकिस्तान अटैक किया, तो क्या करेंगे आप, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई भारत में, सारे देश में, तो क्या करेंगे। तो मार्केट में आप तोरी ज्यादा, 10 किलो तोरी खरीद के लाएंगे, 10 किलो आलू खरीद के लाएंगे, क्या लेके आएंगे ज्यादा भाई, अगले दिन पता नहीं 15 दिन मार्केट खुले ना खुले, तो आप आलू ज्यादा लेके आएंगे, 10 किलो तोरी तो नहीं लेके आएंगे, तोरी तो सारी खराब हो जाएगी ना। तो जो लंबा समय ठहर सके वो चीज आप इकट्ठी करेंगे ना। ये भी एक तरह की ऐसी सिचुएशन है कि जो कोलेस्ट्रॉल खून में बहने के लिए है, ब्लड तो ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जब टेंशन हुई तो आर्टरीज ने क्या किया, दहा चलते कोलेस्ट्रॉल को पकड़ लिया, आ जाओ अंदर, स्टोर कर लिया, और जब शांति हो जाएगी तो क्या होगा, ये इस दीवार को शांति मिलेगी ना, जब तो शांति, प्रेम, खुशी मिलेगी, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकालना शुरू कर देगा, और जितना भी कोलेस्ट्रॉल अंदर है वो सारा का सारा बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। नेक्स्ट। और आज हम क्या करते हैं, आर्टरीज को कैसे खोलते हैं, नारायण भाई हम 10 मिनट और ले लें, 10 मिनट और बैठेंगे आराम से, ओके, क्या भूख लगी है, ओके। आज हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करने के बाद क्या होता है, देखिए एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगाया था अंदर ना, फिर देखिए ब्लॉक हो गया। अगर आपने अपना स्वभाव चेंज नहीं किया, खान पान चीज नहीं किया, तो फिर आपकी आर्टरी ब्लॉक होने वाली है वापिस। आपको पता होगा 100 में से आप एंजियोप्लास्टी करा लीजिए, 100 में से 40 केस में फिर दोबारा से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, 6 महीने के अंदर, 2 लाख रुपए लगेगा और उसके बाद वापिस आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। बाईपास किया, ब्लॉक वहीं रहता है, उसको सिर्फ बाईपास कर दिया जाता है, एक आर्टरी लेकर के दो पैरों से वेन्स लेकर के उनको उस ब्लॉक को वहां से बाईपास कर देते हैं। अगर आपने अपना स्वभाव नहीं बदला तो फिर से आपकी आर्टरीज वहीं से या तो ये ब्लॉक हो जाएगी, इसके आगे ब्लॉक हो जाएगी। जैसे आप अपनी हाथ की रेखा देख करके कोई आपको अच्छा ज्योतिषी बता सकता है कि आपकी लाइफ कितनी है, उम्र कितनी है, आपकी पढ़ाई कितनी करेंगे, आपके हार्ट कैसा है, आपके बच्चे कितने होंगे, आपकी शादी कितनी होंगी, है ना, बता सकते हैं ना, अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। ऐसे ही आपकी एंजियोग्राफी देख करके हम बता सकते हैं कि आपकी आपका स्वभाव कैसा है। हमने रिसर्च जो की है अभी पिछले 9 साल में यहां पर माउंट आबू में, तो हमारे पास 2000 लोगों का डाटाबेस है, उसमें हम देख के, क्योंकि हमारे पास लोगों का एंजियोग्राफी की पूरी फोटोज होती है, प्लस उनकी हमारा स्वभाव, हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं आदमी का, शक्ल देखने से भी और वैसे भी, बस कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, तो आपके अंदर कितना गुस्सा है, कितनी चिंता है, कितना उदासी है, कितना जल्दीबाजी करते हैं, आपका स्वभाव, आपके और अंदर के मन के क्या विचार चलते हैं, वो सब हम टेस्ट कर सकते हैं और उसको नाप सकते हैं। तो उसके द्वारा हम बता सकते हैं, आपकी एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं आपका स्वभाव कैसा है, आपके मन में क्या क्या विचार चलते हैं, आपके पीछे क्या क्या, आगे क्या करने वाले, ठीक है। जैसे जोशी बताते हैं ना, एंजियोग्राफी देख के बता सकते हैं, और आपका स्वभाव देख के बता सकते हैं आपकी कितनी आर्टरीज ब्लॉक हो रही होने वाली है, ठीक है, ठीक है। अर्थात अगर अपना स्वभाव बदल लें तो ब्लॉकेज निकल जाता है। हमारी यही टेक्निक है, अभी हमारे जो हमारे यहां पेशेंट्स आते हैं ना, हम उनके जो ब्लॉकेज देख करके उनको बताते हैं कि आपका ये स्वभाव, इस कारण से ये ब्लॉकेज है, इस कारण से ब्लॉकेज है, इस कारण से ब्लॉकेज है, और आप उसको बदल लीजिए। खाली कहना नहीं, उसको बदलना भी सिखाते हैं, कैसे उसको बदल लेंगे, क्योंकि स्वभाव बदलना कोई सहज काम नहीं है, उसकी बकायदा टेक्निक से, फिर आजू बाजू के द्वारा कैसे उसको बदलना है वो बता देते हैं, खान पान बदल देते हैं, तो उसका वो ब्लॉकेज निकल जाता है। मैं आपको देखाऊं कैसे निकल जाता है, राइट। तो ये जो बाईपास है, बाईपास करना ऐसे ही जैसे कि पेड़ को ऊपर से काट देना, फिर उसको पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, तो फिर दोबारा से पेड़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बाईपास इज टाइम पास, राइट। बाईपास एंड एंजियोप्लास्टी इज टाइम पास, राइट। इट डज नॉट ट्रीट द रूट कॉज, राइट। नेक्स्ट लाइन, इसे पेलिएशन ओनली। तो आज रिसर्च के द्वारा यह पता लग चुका है कि जितनी भी हमारी जो आर्टरीज क्यों ब्लॉक होती हैं, उसका मुख्य कारण है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, लाइक जल्दीबाजी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, उदास रहना, और अपने मन की बातें शेयर ना कर पाना। जैसे विदेशों में क्या हुआ, विदेशों में लोग कुत्ता रखते हैं, डॉग रखते हैं, डीओजी डॉग को रखते हैं घर में, और वो आपस में तो बातचीत ज्यादा नहीं कर पाते, किंतु वो शाम को ऑफिस से आने के बाद या अपने काम से आने के बाद, बिजनेस से आने के बाद, कुत्ते को गोदी में लेके बैठते हैं और उससे सारी बातें बता देते हैं। तो ये देखने में आया, रिसर्च हुई थी, तो ये पता लगा कि जब ऐसे लोगों, जब लोग अपनी डीओजी से सारी बातें करते हैं, तो उनको भी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डायबिटीज कम हो जाती है, हार्ट के अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। और मेरी ओपीडी में भी मैं हमेशा क्या करता हूं, लोग जब मेरे पास दिखाने आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स सारे देश से आते हैं, विदेश के भी कभी कभी आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूं अपनी पत्नी को साथ लेके आओ, या जो भी पत्नी बीमार है तो पति को साथ लेके आओ, और पति बीमार है तो पत्नी को साथ लेके आओ। तो मैं कहता हूं उनको एग्जाम्पल देता ना, कई बार की भी देखो विदेश में लोग कुत्ते को सारी बातें बता देते हैं तो बीमारी कम हो जाती है, तो मैंने कहा आप अपनी पत्नी को सारी बातें शाम को बता दिया करो, या पत्नी बीमार होती है, मैं बोलता पत्नी को कहता हूं कि आप अपने पति को सारी बातें शाम को बता दिया करो। वो कहता है कुत्ता तो सुन लेता सब बातें, कि तू ये कहां सुनती है, या पत्नी कहती है कि मेरा पति मेरी कहां सुनता है, मतलब मुझे तो तुम्हारी बेकार बातें सुनने का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, वो अलग बीमारी। तो ये जो है, इससे जो है, इससे फिर हमारा बिहेवियर रिस्ट्रिक्टर बनते हैं, अर्थात जब आदमी जल्दी में है, चिंता में, गुस्सा में है, तो उसको खाना खाने का समय नहीं है, वो गलत खाना खाता है। जैसे मैंने कहा मूड डिसाइड्स योर फूड, अगर आप गुस्से में हैं तो क्या करेंगे, चिंता में हैं तो क्या करेंगे, तला हुआ खाना खाएंगे, ज्यादा मीठा, आपको मीठा चाहिए खाने को, फ्राइड चाहिए, है ना, तो फिर गलत खाना खाएंगे। एक्सरसाइज करने का समय ही ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होगा, उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, वो वॉकिंग कैसे करेगा, जिसके मरने की फुर्सत नहीं, वो वॉकिंग कैसे करेगा, है ना, तो वॉकिंग भी नहीं करता है, और नींद भी इसको प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि विचार सारा दिन में जो विचार चलते रात में वो विचार चलते हैं, नींद आती नहीं है, है ना। जैसे वो एक आदमी होता है ना, वो एक कहानी कहते हैं ना, कहानी बताते हैं कि एक आदमी कपड़े का बिजनेस करता था, सारे कपड़े दिन में ना कपड़ा फाड़ के देता था, ऐसे ना कपड़े फाड़ के देता था, नहीं एक मीटर दो मीटर जितना चाहिए ना, और रात को भी क्या सपना आ रहा था, मैं दुकान पे बैठा हूं ना, तो फिर क्या हुआ, उसके ऊपर जो शीट थी, बेडशीट वो थी ना, जो कपड़ा जो उसने ओढ़ा हुआ था, उसको क्या किया उसने, उसको भी फाड़ किया। तो जैसा आपका दिन होता है उसके अनुसार फिर रात में आपको सपने आते हैं या रात की नींद होती है, क्योंकि 80% ड्रीम्स कहां से आते हैं, आपके अपनी दिनचर्या से आते हैं। तो ये जो है फिर उनको वो अपनी टेंशन की वजह से क्या करते हैं, स्मोकिंग वगैरह अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, और इससे फिर आर्टरी जल्दी जल्दी ब्लॉक होती है और उसी कारण फिर एंजाइना और हार्ट अटैक्स होते हैं। अगर एक हार्ट अटैक आने के बाद फिर दोबारा आपने फिर भी आपने अपने मन को ना बदला, अपने खान पान को ना बदला, तो फिर बार बार हार्ट अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। और इसका लोग इलाज क्या करते हैं, ये हालत है आपके हार्ट की जब आप जल्दी में हैं, चिंता में हैं, गुस्से में हैं, देख रहे हैं आप, पसंद है ये वाला दिल, देख लीजिए आपका दिल है ना, आपका दिल ऐसी हालत में है। और जब आप सेंसिटिव बिहेवियर, जब आपका सेंसिटिव है, थोड़ी थोड़ी बात में फील करते, नाजुक स्वभाव है आपका, भावुक स्वभाव है, तो आपके दिल की ही हालत है, सारा दिन कुछ ना कुछ धुआं निकलता ही रहता है, धुआं निकलता ही रहता है, सिगरेट नहीं पीता है। और जब ऐसे दिल की हम पेन कैसे दूर करते हैं, आइसक्रीम खाके, ये हमबर्गर पिज्जा, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है अभी आप मछली खा लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। तो इलाज है मछली खाना, मछली खाने से दिल के सब बीमारी ठीक हो जाएंगे। फिर डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज कर लो, फिर लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जिम में क्या होता है, यंग यंग लड़के दौड़ रहे होते हैं, एक कमरे में एक एसी लगा हुआ है, वहां 20 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लोग क्या निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज से क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, बात कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जीने के लिए, तो वो क्या ले रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। आप यंग, क्योंकि दिल तो आपका जवान ही है, भले आप 50 साल के हो गए, तो आप कंपटीशन करते हैं 25 साल के लड़कों के साथ, क्योंकि वो इतना दौड़ रहा है, तो आप भी इतना दौड़ने की कोशिश करते हैं, आप भी इतना वजन उठाने की कोशिश करते हैं, तो जो हार्ट अटैक 5 साल के बाद आना था वो 1 साल में आ जाता है। ये भी कारण है आज के समाज में ज्यादा हार्ट अटैक्स होने का, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो है इनर सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए सोर्स ऑफ इनर स्ट्रेंथ क्या है, इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मैं जो हूं अंदर वो समझ के रहो, जो अपनी रियलिटी है उसमें रहो, तो इससे फिर क्या हो, फियरलेस हो जाएंगे। अपने आप, अपने आप को देह समझा तो मरने का डर लगा, अपने आप को आत्मा समझा तो क्या हो, मरने का डर है क्या, अरे आज मर भी गए, आज शरीर छोड़ा तो क्या होगा, फिर दोबारा हम क्या बनेंगे, वापस आदमी बनेंगे, कुत्ता तो बनेंगे नहीं, है ना, ये तो पता समझ में आ गया होगा ना आपको, क्या मरने के बाद आदमी बनता है, कुत्ता नहीं बनता है, गधा नहीं बनता है, ठीक है, तो वापस आदमी बनेंगे, आदमी बनेंगे तो क्या होगा, 5 साल तो चिंता नहीं करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल, है ना, माई गिलाएगी, माई सब कुछ करेगी, सब कुछ, है ना, पढ़ने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से रहेंगे, है ना। और हर आदमी की, जो भी हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, जो भी सो कॉल्ड बच्चे हैं, मां है, जो भी है, पत्नी है, उनका जो भी हिसाब किताब है वो भगवान ने पहले फिक्स करके भेजा हुआ है, उनका खाना पीना पढ़ना लिखना सब, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब आत्मा अपने आप समझा तो डर अपने आप निकल गया, सिक्योरिटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो प्योरिटी आ गई, पीस लव हैप्पीनेस पावरफुल हो गए, इनर स्ट्रेंथ आ गई, है ना, और इनर स्ट्रेंथ प्रेशर से ज्यादा हो गई और आप हैप्पीनेस और हेल्थ आपको आ गई। नेक्स्ट स्लाइड। और हैप्पीनेस क्या चीज है, ये जो हंसना है ये हैप्पीनेस है क्या, लाफ्टर क्लब में हंसते हैं लोग जो जोर से, वो हैप्पीनेस है क्या, कैसे हंसते हैं लोग, हंस के बताओ जरा, आपने रामलीला देखी आपने, रावण कैसे हंसता है, ऐसे ही हंसते हैं, ठीक है, तो उससे कोई लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं होती है ना। हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इंटरनेशनल डेफिनेशन है, इट इज अ इनर स्टेट ऑफ बीइंग एंड इट कम्स फ्रॉम इनर सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये अंदर की बात है, कैसे आती है, सेटिस्फेक्शन से आती है, अंदर की जब सेटिस्फेक्शन, अंदर से जब संतुष्टि होती है तो खुशी आती है, बाहर की बात नहीं है, बाहर हंसने से खुशी नहीं आती है, बल्कि दिल अंदर से रोता है कि बाहर तो मैं हंस रहा हूं, अंदर से दिल तो, अंदर तो बहुत प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट लाइफ। क्योंकि हैप्पीनेस, संसार में खुश क्यों नहीं है आज कोई भी, क्योंकि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्योरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। मन अगर आपका पवित्र है तो ही आपको खुशी, तो ही आप खुश रह सकते हैं। मन में गंदे विचार आ रहे हैं तो खुश रह सकते हैं आप? शांति है तो खुश है, शांति नहीं तो खुश कहां से होंगे? सच्चाई है तो खुश है, झूठ अंदर से चल रहा है खुश कहां से होंगे? अंदर में डर है तो खुश रह सकते हैं? फियरलेसनेस है, पावर ऑफ कॉल्ड सहन शक्ति है तो खुश है, सहन करनी शक्ति। अगर आपने अभी कोई आपकी बड़ाई कर रहा है बहुत खुश हो रहे हैं, और किसी ने आपकी थोड़ी सी बुराई कर दी तो क्या होगा? सहन शक्ति है ही नहीं तो कहां से खुश होंगे? हो ही नहीं सकते। ऐसे ही इजी नेचर, अगर आपका सरल स्वभाव नहीं तो नहीं खुश नहीं रह सकते हैं। स्वीटनेस नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसे ही रहम नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हैं। प्यार नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हैं। त्याग नहीं है तो खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये जो रियल सोर्स है, और ये आत्मा के सारे गुण हैं, नेचुरल गुण। जैसे पानी का गुण क्या है? ठंडक। और आग का गुण क्या है? गर्मी। गर्मी के आग के पास जाओ तो आपको गर्मी मांगनी पड़ती है कि आओ जाओ मेरे पास आ जाओ आने? अगर अपने को बॉडी समझा तो डर लगेगा ही लगेगा, चिंता होगी होगी, जल्दी होगी होगी। ऐसे अपने को आत्मा समझा तो शांति अपने आप, प्रेम अपने आप, प्योरिटी अपने आप आएगी, मांगनी पड़ेगी। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सब मैं समझता हूं, एक स्लाइड के बाद आपको पूरा करेंगे इस स्लाइड को। तो ये है इनर स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे, इसको राजयोग से बढ़ा सकते हैं। और राजयोग क्या है? सिंपल सी बात है, ABCD। राजयोग इज ए फॉर आत्मा, सिंपल, ए फॉर आत्मा, राइट, एंड बी फॉर बाबा, बाबा मीन्स गॉड फादर, राइट, है ना, एंड सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरा कनेक्शन किससे है? आत्मा कनेक्शन किससे है? वो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। आत्मा का आत्मा से कुछ, आत्मा से आत्मा को कुछ मिलता नहीं है। और डी फॉर ड्रामा, ड्रामा माना हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ना, हर एवरी सोल इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। तो ये मैं समझता हूं स्ट्रेस वर्सेस राजयोग का ये बताया हुआ है, जिसमें आपको दिखा दूं, अगर आप जब भी टेंशन में हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है। ये रिसर्च की हमने जो पता, इससे पता लगा है राजयोग से हार्ट रेट कम होता है, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, राजयोग से कम होता है, श्वास की गति रेस्पिरेशन से बढ़ जाती है और ये राजयोग से कम हो जाती है। ऐसे ही बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्ट्रेस से बढ़ जाता है और राजयोग से कम हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है राजयोग से बढ़ जाएगा और स्ट्रेस से कम हो जाएगा। इसी तरह से जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो क्या होंगी? स्ट्रेस से सिकुड़ जाएंगी और राजयोग से ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे है, ये स्ट्रेस जब भी आपके अंदर होगी तो क्या होगा? आपके अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है और फाइट एंड फ्लाइट, या तो लड़ते हो या डरते हो। ठीक है, और राजयोग से क्या होता है? आपका पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्यूरेट हो जाती है और आप हेल्दी एंड हैप्पी रहते हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कॉन्सेप्ट है बस ये लास्ट में, कि हेल्दी माना हील दाई। हेल्दी शब्द दो शब्द से निकला, हील दाई, हील योर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। डॉक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, योर फैमिली मेंबर्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, और हेल्दी माना स्वस्थ, ये भी दो शब्दों से बना है, स्व मीन्स इनर सेल्फ और सोल, एंड स्था मीन्स कॉन्शियस। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, एंड एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस, राइट। एवर हैप्पी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। तो एवर हेल्दी रहना हो चाहे एवर हैप्पी रहना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज सोल कॉन्शियस। और ऑलवेज सोल कॉन्शियस रहने के क्या करना पड़ेगा? अभी सोल कॉन्शियस माना क्या है? शांति, प्रेम, खुशी, वो कहां से आएगी? परमात्मा उसका सागर है, ओशियन है, उससे कनेक्शन में रहेंगे तो यहां आएगी शांति, प्रेम, खुशी आएगी। नहीं तो क्या होगा? अब मेरे यहां शांति, प्रेम, खुशी कम होती है तो क्या होता है? मैं शांति कहां ढूंढता हूं, प्रेम कहां ढूंढता हूं? ना ना, सपोज मेरे यहां कम हो गई, यहां पे शांति, प्रेम, खुशी कम हो गई, तो मैं कहां ढूंढता हूं? ना परमात्मा ही ढूंढता हूं। कहां ढूंढता हूं? राजयोग में भी ढूंढता हूं। आम आदमी की बात कर रहा हूं, कहां ढूंढता है आदमी? प्रेम कहां ढूंढता है? दूसरे में ढूंढता है ना। खुशी कहां ढूंढता हूं? कुछ खाने में ढूंढता हूं। आजकल लोग खुशी कैसे पूरी कर रहे हैं? चलो आज चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज चलो होटल में चलते हैं। नहीं, खुशी कहां से लेने की कोशिश करें? खाने में खुशी ढूंढ रहे हैं, इसलिए मोटे होते जा रहे हैं। नहीं है ना, प्रेम ढूंढ रहे हैं कहां पर? रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं, जो है नहीं वहां पर। जो चीज जहां पर नहीं है वहां से कैसे मिलेगी मुझे बताओ? हर आदमी को क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए। अगर आपके पास है ही नहीं तो आप कहां से देंगे? तो सोर्स क्या है, सिर्फ एक परमात्मा है और उसकी याद में रहेंगे तो हमें वो मिलेगा, राइट। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद मैं सिर्फ एंजियोग्राफीज दिखाऊं, ये मैं छोड़ दी, नेक्स्ट स्लाइड सिर्फ एंजियोग्राफीज दिखा दीजिए, ये छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से हमने किया था साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, इसको भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। एंजियोग्राम्स दिखाता हूं इसमें, ये लाइट एक बार ऑफ करेंगे तो मैं इनको दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो ये एक पेशेंट है, जयपुर का पेशेंट है, इसकी आर्टरीज ब्लॉक थी, ये 90% ब्लॉक था, देख रहे हैं आप यहां पर। और इसने इस प्रोग्राम को फॉलो किया, मतलब राजयोग को फॉलो किया, डाइट को और एक्सरसाइज को फॉलो किया। डाइट हमारी शुद्ध सात्विक डाइट, मतलब सात्विक माना जिसमें सातों एनर्जी इससे भरपूर हो, सात्विक वेजिटेरियन शाकाहारी डाइट हो, उसको फॉलो किया। तो देखिए उसके ब्लॉकेज, ये पूरा कपड़ा निकल गया, देख रहे हैं यहां पर भी, देख रहे हैं, ये देखिए पूरा कपड़ा ठीक हो गया, ये बिना ही किसी एंजियोप्लास्टी के, बिना ही किसी बाईपास के ठीक हो, राइट। जबकि किसी भी प्रोसेस से, ना प्राणायाम से, ना सवासना से, ना किसी और भी किसी भी एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता, ब्लॉकेज निकल नहीं सकता। जो ब्लॉकेज 45 साल में, ये 52 साल का पेशेंट है, 52 साल के पेशेंट को 51 साल लगे ब्लॉक होने में आर्टरीज, और एक साल डेढ़ साल में उसकी ब्लॉकेज खुल गई, डेढ़ साल में उसकी ब्लॉकेज खुल गई। जबकि आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो कि ब्लॉकेज को खुल सके, कोई ऐसा खाना नहीं है जिससे जिससे ब्लॉकेज खुल सके, कोई भी ऐसा आसन नहीं है, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आसन खुल सके, ये सिर्फ राजयोग की शक्ति से। कैसे बताया मैंने आपको, कैसे ये ब्लॉकेज किस कारण से हुआ इस आदमी को, कौन से विचार थे जिससे आर्टरी ब्लॉक हुई, और उस जब उसको बताया गया कि विचार से आपकी आर्टरी ब्लॉक हुई है, इन विचारों को जीवन में कैसे निकालेंगे, तो ब्लड सप्लाई वापस चालू हुई, ये यहां पर जो ब्लॉक है वो कैसे हुआ उसको बताया गया, उसको राजयोग से सिखाया गया, तो उसका ब्लॉकेज निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये एक शिवचरण नाम का पेशेंट है, दिल्ली का है, ये देख रहे हैं यहां ब्लॉकेज है, और इसने फॉलो किया, देखिए इसका ब्लॉकेज खुल गया। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए इतना लंबा ब्लॉक है, ये लेडी है मंजुला, बॉम्बे की पेशेंट है, यहां से लेके यहां तक इसका ब्लॉकेज है, इसको एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते, उसने जब इस प्रोग्राम को फॉलो किया, देखिए पूरी की पूरी ब्लॉकेज खुल गया, राइट। नेक्स्ट स्लाइड, ये 100% ब्लॉकेज है।